हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रविवार प्रातकालीन प्रवचन में। इस्कॉन पंजाबी विभाग श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम मंदिर में, जैसे कि आप सब जानते हैं, सामान्य शिष्टाचार है कि क्लास में मोबाइल बंद रखें, और यदि आपके पास कोई बच्चे हैं उनको शांत रखें। तो आज श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के सप्तम अध्याय के 23 से लेकर 29वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। श्वेतपट पर 29वां श्लोक है। पहले इसके पिछले जितने भी श्लोक हैं उनके उनका उच्चारण करेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे, लेकिन ये श्वेतपट पे जो है उसको आप सब दोहरा सकते हैं बाद में। श्लोक संख्या 23। गुणमय स्वशक्त्या सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धात्से यदा स्वकृत् भूमान् ब्रह्मा विष्णु शिवाद्भिदम्। Oh, I forgot I have to speak from Hindi. हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाशित तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपनी निजी शक्ति से इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, और जब आप सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के नाम अपना कर लेते हैं। तात्पर्य, यह स्तुति वास्तव में पुरुष रूप भगवान विष्णु को अर्पित की गई है, जो अपने गुण अवतारों में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का नाम अपना लेते हैं। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदा सद्भाव भावनं नाना शक्ति विराभादा स्वतात्मा जगदीश्वरः। आप समस्त कारणों के कारण आत्म प्रकाशित अचिंत्य निराकार ब्रह्म हैं, जो मूलतः परब्रह्म है। आप इस दृश्य जगत में विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। यह स्तुति निराकार ब्रह्म की है, जो परब्रह्म की तेजवान किरणों से युक्त होता है। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम परमम भगवान। जब शिव जी की पूजा परब्रह्म के रूप में की जाती है तो वह भगवान विष्णु के लिए होती है। त्वं शब्द योनिर् जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव काल क्रतु सत्यमृतम च धर्म त्वय्यक्षरम यत्रवित् तामनांती। हे स्वामी, आप वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप भौतिक सृष्टि, प्राण, इंद्रियों, पांच तत्वों, तीन गुणों तथा महत्तत्व के मूल कारण हैं। आप नित्य काल, संकल्प तथा सत्य और ऋत सत्य का ही एक विभाजन है, धर्म के लिए कही जाने वाली दो धार्मिक प्रणालियां हैं। आप तीन अक्षरों आ ऊ तथा उम वाले ओम शब्द के आश्रय हैं। अग्निर्मुखम तेखिल देवदात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम तेखिल देवदात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशाम। हे समस्त लोगों के पिता, ये किससे बात हो रही है? शिवजी से हो रही है। Just in case you are not confused till now. ये समस्त लोगों के पिता, विद्वान लोग जानते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल है, आप निखिल देवरूप हैं, नित्य काल आपकी गीत है, आपकी गति है, सारी दिशाएं आपके कान हैं, और जल का सौम्य वरुण आपकी जीभ है। जिसने भगवत गीता बिना पढ़े भागवतम पढ़ लिया तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा एक तरीके से ये श्लोक पढ़ने से। श्रुति मंत्रों में कहा गया है अग्निस्वदेवताः, अग्नि सारे देवताओं का पुंज है, अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि के द्वारा ही भगवान सारे यज्ञ आहुतियां स्वीकार करते हैं। नाभिर्नभस्ते श्वसनम नभस्वान सूर्यश्च चक्षुंसि जलम स्मरेतः परावरात्मा श्रयनम लवात्मा सोमा मनोद्योर भगवान चिरस्ते। 27वां श्लोक है अभी। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी श्वसन क्रिया है, सूर्य आपकी आंखें हैं तथा जल आपका वीर्य है। आप समस्त प्रकार के उच्च तथा निम्न जीवों के आश्रय हैं। चंद्रदेव आपका मन है, उच्चतर लोक मंडल आपका सिर है। कुक्षि समुद्राग्रयोस्ति संगारो मानि सर्वाउषधि विरुदस्ते छंदांसि साक्षात् तव सप्तधा तवस्त्रयी मयात्मान हृदयं सर्वधर्मः। हे प्रभु, आप साक्षात तीनों वेद हैं, सातों समुद्र आपके उदर हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं, सारी औषधियां लताएं तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं, गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर के सात कोश हैं, लेयर्स, कोश मतलब लेयर, और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। अभी श्वेत पट पे जो श्लोक लिखा है उसको पढ़ते हैं, आप लोग दोहराएं। वैदिक उच्चारण रीति के अनुसार करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आप सभी भी कोशिश करिए। मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यस्त्रिंशदष्टोत्तर मन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वम् देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। धन्यवाद। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की मुखानी मुखमंडल पंच पांच उपनिषद वैदिक वांग्मय तवा तुम्हारा ईशा हे स्वामी यही जिससे त्रिंशत अष्ट उत्तर मंत्र वर्ग 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों की कोटि में यत् जो तत् जैसा है शिवा आख्यम शिव नाम से विख्यात परमात्म तत्वम जो परमात्मा विषयक सत्य की पुष्टि करता है। देवा हे भगवान स्वयं ज्योति ही आत्म प्रकाशित अवस्थिति ही स्थिति ते आपकी। अनुवाद कृपया दोहराएं। हे प्रभो, पांच महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके पांच मुखों के द्योतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं, आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इस संबंध में जिन पांच मंत्रों का उल्लेख हुआ है वे हैं पुरुष अघोर सद्योजाता वामदेव तथा ईशाना। ये पांच मंत्र उन 38 विशेष मंत्रों की कोटि में आते हैं जो शिवजी द्वारा उच्चरित होते हैं, इसीलिए वे शिवजी या महादेव कहलाते हैं। उनके शिव अर्थात कल्याणकारी कहलाने का एक अन्य कारण यह है कि वे परमात्मा कहलाने वाले ठीक भगवान विष्णु की तरह आत्म प्रकाशित हैं। क्योंकि शिवजी भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं, अतएव वे विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। इस तथ्य की पुष्टि एक वैदिक मंत्र पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिववच्युतम से होती है। परमात्मा अनेक नामों से जाने जाते हैं, जिनमें से महेश्वर शिव तथा अच्युत विशेषतः उल्लेखनीय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कितने लोगों को ये श्लोक समझ में आया? तात्पर्य जो पढ़ा हाथ ऊपर करें, कितने लोगों को समझ में आया? ये अनुवाद एक और बार पढ़ता हूं, फिर आप मेरे से पहले, आप पहले बोलिए फिर मैं बोलता हूं। हे प्रभु, पांच महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र आपके पांच मुखों के द्योतक हैं, जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से विख्यात स्वयं प्रकाशित हैं। आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। कोई शक? ये शिवजी से संबोधित किया जा रहा है। क्या कोई हिचकते हैं तो शुरू कर देते हैं हम ये बात। रुद्रस्य यशसो अर्थाय स्वयं विष्णुर विषम विभु न सजा ह्रे समर्थोपि वायुं चोचे प्रशांतये। श्रीपाद मध्वाचार्य बोलते हैं, जो हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, जिनसे हमारी परंपरा जुड़ी हुई है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, कि कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि क्षीर सागर के मंथन के बीच में हलाहल विष प्रकट हुआ वासुकी के मुख से, तब वो चारों तरफ फैल रहा था, देवों असुर दोनों के ऊपर खतरा था, संपूर्ण ब्रह्मांड को खतरा था। तब कैलाश में विराजमान पार्वती के समेत या दुर्गा जी के समेत शिवजी जो बैठे थे, ऋषियों द्वारा स्तुति की जा रही थी उनकी, उनके पास देवासुर गण पहुंचे और उन्होंने उनकी स्तुति की। तो यह सवाल उठाया जा सकता है, क्या भगवान विष्णु सक्षम नहीं है हलाहल विष को पीने के लिए, या उससे जो परिणत फल उत्पन्न होते हैं उनसे ब्रह्मांड को बचाने के लिए? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर मध्वाचार्य बताते हैं, ये जो परिस्थिति थी इसको सुधारने के लिए पूर्णतः सक्षम थे भगवान विष्णु, टोटली कॉम्पिटेंट, लेकिन अपने भक्त शिवजी को श्रेय देने के लिए, जिन्होंने बाद में उस हलाल विष को पिया और अपने कंठ पर रखा, इसलिए नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। भगवान विष्णु ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया। तो एक प्रकार से कभी कभी एक कंपनी का चेयरमैन होता है, वो कुछ चीजों, हर चीजों को खुद नहीं करता, डेलीगेट करता है। तो कोई महान कार्य है किसी के करने से उसकी महत्ता विख्यात होती है, उस व्यक्ति के बारे में लोग गुणगान करते हैं। आज भी नीलकंठ नाम से वो विख्यात है शिव जी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि विष्णु जी सक्षम नहीं है। कौन बता रहा है? आचार्य बता रहे हैं। हम अपने मनोधार्मिक परिकल्पना से, मेंटल स्पेकुलेशन से ये नहीं बोल सकते। राम जिनके ईश्वर हैं उसको हमने समझ लिया, राम के ईश्वर जो हैं, तो हमें अपने इंटरप्रिटेशन लगाने नहीं चाहिए। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, उसके पहला लाइन क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु। अभद्रेशु में टेलीविजन सीरियल्स आते हैं, अभद्रेशु में अमर चित्र कथा आती है, अभद्रेशु में न्यूज़पेपर फेथ कॉलम्स आते हैं, जिसको पढ़ के हमने अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव बना रखी है। लेकिन महाभारत में तो भगवान ऐसे कहते हैं, या फिर कृष्ण तो बोलते कर्म ही पूजा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कल तुम्हारा था आज किसी का है, परसों किसी और का है। गीता सार कहां लिखा है? गीता सार, और इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, आपकी गीता में तो बताते हैं भगवान कर्म ही पूजा। एक बार वापस पूछेंगे कहां लिखा है? पता नहीं। एक मित्र थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो उनसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा, उनको ठीक से उत्तर आ नहीं रहा था, तो उन्हें बताया, उन्होंने पूछा ये भगवत गीता के कौन से अध्याय में लिखा हुआ? उन्होंने पूछा वापस, उन्होंने बताया 19वें अध्याय में। अगला व्यक्ति खुश। तो जो ज्यादातर व्यक्ति जो प्रश्न पूछते हैं उनको पता भी नहीं है, या जो जिनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उतने क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट ही नहीं उनके। तो इसलिए शीला प्रपात का आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10,000 साल के लिए सुवर्ण युग जो चलेगा श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन यज्ञ, इसका आधार ये शिला प्रपात का आंदोलन है, ये इस्कॉन संस्था है। आप सब परम सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है कि संस्था से जुड़े हैं आप। विश्वास नहीं हो रहा तो शास्त्र को ही पढ़िए, श्रीला प्रभुपाद ने ग्रंथों का वितरण किया है, स्वयं अभी भी कर रहे हैं। वॉट कैन योर प्रीचिंग डू? 3 मिनट्स ऑफ योर प्रीचिंग डू? गिव हिम अ बुक एंड इट विल चेंज हिज लाइफ। ये प्रचार, 3 मिनट का प्रचार हम जो करें उससे क्या फायदा है? एक पुस्तक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देंगे उसका जीवन बदल जाएगा। इतने लोगों का जीवन बदल चुका है ग्रंथों का अध्ययन करने से। एक व्यक्ति ने पूछा था, इतने भक्तों का हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये लोग सारे भक्त नहीं बनेंगे या दीक्षित नहीं होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद ने बताया, जब तक वे मेरे ग्रंथों को पढ़ते हैं वो मेरे दीक्षित हैं। लेकिन कृपया ये बोलते हुए मत फिरना कि मैंने कल कृष्णा बुक पढ़ा, मैं प्रभुपाद का शिष्य हूं, वैसा नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके आदेशों का पालन हम करेंगे तो उन्होंने हमें स्वीकार किया है। इस संस्था के लिए प्रमुख शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, सर्वोच्च, उनके ऊपर कोई नहीं है शिक्षा गुरु। तो प्रभुपाद के ग्रंथों में जो स्पष्ट वर्णन आया है इस प्रकार के, खास करके नाजुक विषयों के ऊपर, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, उनको खास करके हमें प्रभुपाद के ग्रंथों से ही उद्धरण करना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि देवतागण जाके शिवजी से प्रार्थना करते हैं, त्राहिना सर्वनापन्नाम त्रैलोक्य दहनाद विषाद, हम आपके चरण कमलों में शरण लेने के लिए आए हैं हे शिवजी, कृपया आप इस घोर विष से हमें बचाइए जो कि तीनों लोकों में फैल रहा है। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है? विभूति योग, ऑपुलेंस ऑफ एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ऑफ सुप्रीम नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, टोटली कंफ्यूज, व्हाट इज द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो उसमें से कुछ चीजें हम बताएंगे जिसे स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान स्वयं क्या बताते हैं और आचार्य क्या बताते हैं। 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जितने भी रुद्र हैं मैं उनमें से शंकर हूं, शिव हूं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, 11 रुद्र हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जब ये जगत इसका संहार होने वाला है तो 11 रुद्रों में बढ़ जाते हैं और संहार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं, शीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्थि हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध दही बन सकता है लेकिन दही दूध नहीं बन सकता, तो भगवान के गुणावतार है तीन, याद रखे गुणावतार, इसके पिछले श्लोकों में भी आया। कौन है गुणावतार भगवान के? ब्रह्मा, विष्णु और शिव अथवा महेश्वर, महेश्वर शब्द दिया गया। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिपति हैं, इंचार्ज हैं। रजोगुण के बिना कोई सृष्टि नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की सृष्टि के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। क्रिएटिव एनर्जी वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। और स्वयं भगवान विष्णु सतोगुण के अधिपति हैं और तमोगुण के अधिपति हैं कौन? महेश्वर अथवा शिव। तो श्रील प्रभुपाद कई स्थानों में इन तात्पर्य में बताते हैं कि जब भी सुरक्षा के लिए कोई प्रार्थना की जाती है, विशेष करके शिवजी के प्रति जो सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है, असली में भगवान विष्णु का संकेत होता है। अन्यथा भगवान शिव का या शिवजी का उद्देश्य क्या है? सृष्टि स्थिति या संहार, क्या है? संहार। तो भगवान शिव या शिवजी जो है ईश्वरों में एक हैं। ईश्वर अर्थात नियंता। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, टाइनी ईश्वरस। श्रील प्रभुपाद शिवजी के लिए शाक्त्यावेश अवतार का भी प्रयोग करते हैं, उस शब्द का भी संकेत देते हैं। गुणावतार भी बोल रहे हैं, शाक्त्यावेश अवतार भी बोल रहे हैं। शाक्त्यावेश अवतार अर्थात किसी प्रत्येक जीव को शक्तिपात किया जाता है, उसको शक्ति प्रदत्त किया जाता है कि वो विशेष कार्य निभाएं, भगवान के प्रतिनिधि में भगवान की ओर से कुछ कार्य करें। इनको शाक्त्यावेश अवतार बताया गया। लेकिन भागवतम में अन्यत्र वर्णन आता है, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा स्वयंभु वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम ततम। मैं स्वयंभु नारद शंभु श्लोक में पहुंच गया इसमें। तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिवजी, बहने वालों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी, देवों में सर्वोच्च है अच्युत और पुराणों में सर्वोच्च है ये श्रीमद् भागवतम। आप देखेंगे इस श्लोक के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि परमात्मा को कई शब्दों से बुलाया जाता है या परमात्मा कई शब्दों से जाने जाते हैं, जिनमें से महेश्वर, शिव, अच्युत इत्यादि हैं। बताया गया कि यथा तरुर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारार्च यथेन्द्रियाणां तदेव सर्वार्पणमच्युतेभ्य सर्वार्पणमच्युतेभ्य। जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से सारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से संपूर्ण पेड़ को, पौधे को शक्ति मिलती है, उसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं उनको पूजने के बजाय, उनको पूजने का फल प्राप्त करना है तो सब कुछ अर्पित करना है अच्युत को। अन्यत्र त्रिसंध्या जो मंत्र बोलते हैं यजुर्वेद से, उसमें भी आता है आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से जल गिरता है और बह जाता है सागर की तरफ, उसी प्रकार सभी देवों को जो भी उपासना की जाती है उनकी तरफ, वो सब किसकी तरफ जाता है? कृष्ण की तरफ। और भगवान गीता में बताते हैं देवी देवताओं की जो उपासना करता है वो मेरी ही उपासना कर रहा है, लेकिन किस प्रकार? अविधि पूर्वक। तो एक मोहन प्रभु से मैंने सुना था एक बार एक प्रवचन में, उन्होंने बताया कि देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं उस उपासना का परिणत फल यह है कि मृत्यु के उपरांत जिस चेतना के अनुसृत हमारा गंतव्य स्थान होता है उसे पता चलता है कि देवी देवता की उपासना जो करता है वो उपासना जाती है कृष्ण को, उपासक जाता है देवी देवता के पास, क्योंकि देवी देवता को पता है किसको पहुंचाना है ये उपासना उनको जो मिलती है। छोटे से छोटे भक्त को भी, न्यू भक्त ट्रेनिंग में भी, छोटे से छोटे मतलब हाइट के हिसाब से बोल रहा हूं, उसको भी बताया जाता है कि आपको कोई भी कुछ गुणगान करता है तो आप तुरंत गुरुदेव को, गुरु परंपरा को, प्रभुपाद को या भगवान को अर्पित कर दीजिए, या जैसे कुछ भी बताते तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे दासोऽस्मि। जब इस प्रकार के भूतल के जीवों को भी पता है कि हमें जो श्रेय मिलता है तो भगवान को देना है, तो देवी देवताओं को भी स्वाभाविक मालूम ही होगा, विशेष करके शिव जी को जो कि वैष्णवानाम यथाशंभु है, जिस प्रकार के वैष्णव हैं, भले ही हम समय के प्रवाह में आकर गलत धारणाएं अपना लेते हैं कि शिव परमात्मा इत्यादि, यहां पे हमें समझना है कि शिव को जो परमात्मा बताया गया है इसका संकेत क्या है। शिव जी यहां पर जब भी उनको प्रार्थना की जाती है परमात्मा के रूप में, विष्णु की ही प्रार्थना की जाती है, जैसे हमने पहले बताया जितनी भी प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, वो स्वयं परम भगवान को ही जाता है, देवी देवताओं को नहीं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जब भगवान विष्णु भौतिक शक्ति अथवा माया से स्पर्शित नहीं है, अपनी बहिरंगा शक्ति से स्पर्शित नहीं है, तब विष्णु है, लेकिन जब बहिरंगा शक्ति से जब स्पर्शित होते हैं तो क्या है? शिव है। तीसरे स्कंद में आता है वर्णन कि परम भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति के ऊपर, असंख्य जीवों को अंदर पहुंचाते हैं, तो वो जो दृष्टि है वो क्या है? शंभु कहलाती है, उस दृष्टि को शंभु बताते हैं। और इसलिए पिछले तात्पर्य में भी हमने देखा था कि जगत पिता कहलाते हैं शिव जी। अब तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि असंख्य जीव जितने भी हैं वो जगन माता और जगत पिता के संग से भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, दुर्गा जी और शिव जी के। इस दृष्टि से एक प्रकार से देखा जाए उनको जगत पिता बताया गया, लेकिन क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति का स्पर्श जब होता है तो प्रत्यक्ष विष्णु नहीं करते, अपने विस्तार से करवाते हैं शाक्त्यावेश गुण अवतार से। अब पृथु महाराज के प्रसंग में पढ़ेंगे, आचार्य बताते हैं कि जब यज्ञशाला में पृथु महाराज के जब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे तो एक प्रकार से गरुड़ जी के ऊपर बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि भौतिक जगत है उसके ऊपर उनका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, पैर नहीं रख पा रहे थे, वो यहां के नहीं है, भौतिक जगत से उनका संबंध नहीं है प्रत्यक्ष रूप में। कई आचार्य तो यहां तक बताते हैं कि उनके भौतिक विस्तार है जिन्होंने असुरों को मारा ब्रज में भी। कुछ आचार्य का मत है वराह नहीं है, वराह ही ने मारा, भौतिक शक्ति उन्हीं के भौतिक शक्ति ने मारा। हालांकि इसमें अलग अलग मत है, लेकिन हम इतना जरूर समझ लें कि परम भगवान को भौतिक कार्य करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। कई कार्य ऐसे हैं जो अपने अवतारों से, गुणावतारों से, शाक्त्यावेश अवतारों से भगवान निभा लेते हैं, कार्य डेलीगेट कर लेते हैं। तो शिव जी का कार्य भी वैसा ही है, हलाहल विष पीना उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब भगवान कृष्ण स्वयं भीष्म देव के पास युधिष्ठिर महाराज को क्यों लेके आए, क्यों लेके आए बताइए? जब शरशय्या पर लेटे थे भीष्म देव, उनके पास क्यों लेके आए भगवान कृष्ण दुष्यंत महाराज और पांडवों को, कौन बताएगा? यस प्रभु जी, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आपने भक्त की महिमा बताने के लिए, भक्त को श्रेय देने के लिए, तो भगवान स्वयं आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ, कि अपने महाजन के मार्ग चिन्ह पर चले, पद चिन्हों पर चले। महाजनों ये न गतस्य पंथः, 12 महाजनों में एक है भीष्म देव। तो भगवान भक्ति की विधियों का अनुशीलन अथवा अनुष्ठान, उसके बारे में कुछ भी बताना चाहेंगे अपने महाजनों के माध्यम से बतलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कुंती महाराज की प्रार्थनाएं हैं, या प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हैं, इन सब में साधु संघ के ऊपर जोर दिया गया। जब भगवान स्वयं खड़े हैं, उनसे पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज ही बता रहे हैं कि आपके भक्तों का संग मुझे मिले। ध्रुव महाराज बता रहे हैं भक्तिर मुह प्रवहताम तोई में प्रसंगो, आपके प्रसंग के बारे में जो भक्त वर्णन कर रहे हैं एक दूसरे से, मुझे उनका संग प्राप्त हो। या कुंती महारानी बोलते हैं कि आपके प्रति मुझे उसी प्रकार की रति प्राप्त हो जैसे ही गंगा सागर की तरफ बहती है। लेकिन अन्यत्र ये भी हम समझते हैं कि वो स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे वृष्णियों और गुरुओं से जो मेरा आसक्ति है उसको काटिए। तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं महाजनों से, हम समझ सकते हैं। कुंती महारानी ने 12 महाजनों में नहीं आती, लेकिन ये प्रमुख 12 महाजन, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य महाजन नहीं है, ये प्रमुख 12 महाजन है जिनके माध्यम से भगवान सिखाते हैं। उनमें से शिवजी भी एक है कि भगवान के लिए जो व्यक्ति विष पीने के लिए तैयार है या खाने के लिए तैयार है, किस फॉर्म में भी ले लें, फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं अभी। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश में स्नेह पाशम इमं छिंदि दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। अभी हमने जो बताया कुंती महारानी की प्रार्थना, लेकिन ये प्रार्थना जब प्रारंभ हुई उसके पहले एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी, कौन जानता है क्या है, प्रथम स्कंध में वर्णन आता है। कुंती महारानी की प्रार्थना जब हो रही थी उसके पहले, ठीक पहले कुछ एक प्रमुख घटना हुई थी, क्या है कौन बताएगा? डिवोट टेम्पल डिवोटिस नहीं, कोई अन्य बताए जो रेगुलरली आते हैं बाहर से, कॉन्ग्रीगेशन से आते हैं, किसको पता है? ठीक है, नो यू से आप ही बताए। हाँ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा परीक्षित को मारने के लिए, कुरु वंश के या पांडु के वंश के अंतिम बीज को खत्म करने के लिए। तब उत्तरा जी आई और उन्होंने प्रार्थना किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये द्वंद्वों से भरी इस मृत्यु से, ये विश्व है, इसमें द्वंद्व भरे हैं, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, सुख है तो दुख भी है, जय है तो अपजय भी है। तो कुंती उत्तरा देवी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया मेरी सुरक्षा करिए, त्राही त्राही पाही पाही, क्योंकि आपके अलावा इस मृत्यु से मुझे बचाने के लिए और कोई सक्षम नहीं है। तो भक्त जानते हैं, और उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं मृत्यु के क्रूर चंगुल से, इस विशेष करके इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता, सिवाय उसके जिसने परम भगवान के चरण कमल का शरण लिया है, वही व्यक्ति बचा सकता है। तो यहां पर तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त का श्रेय बढ़ाने के लिए देवी देवताओं के साथ स्वयं गए। स ईश्वर, हाँ ये शब्द बताया गया, स ईश्वर उनके साथ लेके गए। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था, माया से हम कैसे बचें, जानना चाहते हैं? कैसे? कितने लोग जानना चाहते हैं माया से कैसे बचे? ठीक है, जिन लोगों को मानना जानना नहीं है वो बाकी लोगों से फिर भी समझ लें। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, आप एक नाव में हो, नाव में टिके रहो, भले ही उसमें आंदोलन आएगा, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, लेकिन इस नाव से आप छलांग मत लगाइए, अर्थात भक्तों के संग में टिके रहिए। भले गीला हो जाएंगे लेकिन डूबेंगे नहीं, बीच बीच में समस्याएं आएंगी, देवी देवता के साथ भी आए हैं हम, हलाहल विष भी आएगा जीवन में कभी कभी, हाल बेहाल विष भी आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि ये महाजन जितने भी हैं वो भी भक्तों के संग के बारे में बोल रहे हैं। श्रील रामानंद राय से जब प्रश्नोत्तरी हो संवाद हो रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो उन्होंने बताया कि सर्वोच्च दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, कौन बताएगा? यस बताइए। हाँ, भक्तों का साथ छूट जाना, तो उसमें क्या है? क्यों आपको भौतिक सुविधाएं देते हैं? इसलिए कि मंदिर में प्रसाद आसानी से मिल जाएगा, महाप्रसाद आसानी से मिल जाएगा, इस वजह से मंदिर में एसी पे बैठ सकते बिना पैसे के, फिर क्यों? माया से बचाएंगे, क्यों? वो माया से ज्यादा शक्तिमान है, क्यों? और कोई बताइए। कृष्ण वहां रहते हैं, गायंती यत्र मत भक्ता तत्र तृष्णा में नारदा, जैसे किसी के घर के बाहर बिवेयर ऑफ डॉग लिखा है, इतना चिल्लाता है कुत्ता हमें देखे भूखता है, लेकिन एक बार टॉनी नो बॉय सिट डाउन, बस चुप। तो इसी प्रकार मामेव एवं प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते, मात्र मेरे जो प्रपन्न होता है, श्री वैष्णव का एक प्रपन्न बहुत प्रमुख ग्रंथ है प्रपन्नामृत, इसमें शरणागति के बारे में बताया गया, लेकिन बिना भक्ति के शरणागति अपने में पूर्ण नहीं है। शरणागति का परिणत फल क्या होना चाहिए? भक्ति। भक्ति अर्थात नवविधा भक्ति की विधियों का पालन करना, भगवत अर्चना रूपे का निष्काम कर्म बिर विशुद्ध चित्त, बलदेव विद्याभूषण पाद बताते हैं कि ये जो श्रवण कीर्तन इत्यादि को गिनते हुए जितने भी विद्या हैं भक्ति के, ये मेरे जीवन है, मेरे प्राण है, मैं चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो, किसी भी अवस्था में हूं, मैं इन विधियों को नहीं छोड़ूंगा। श्रील सत्स्वरूप दास महाराज बताते हैं जपा रिफॉर्म पुस्तक में कि जब करते समय कितने लोगों का संघर्ष होता है? कुछ लोगों का संघर्ष नहीं होता, हम सब उनके पास बैठ के जप करें, तो संघर्ष होता है, स्वाभाविक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पर ब्रह्मचारी अपने शिखा को टांग देते थे छत से तो गिरे ना। अभी जापान में एक नया आविष्कार आया है, मेट्रो में सोते समय एक स्टैंड है जो कि आप लगा सकते हैं ताकि आपके गर्दन के ऊपर नोच नहीं आएगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे लगता है हमें भी जब जप कर रहे हैं ऐसा कुछ सपोर्ट रखना चाहिए। वैसे एक योगा सपोर्ट होता है, देखा एकलव्य प्रभु कुछ भक्त पहनते हैं जो कि जो दोनों घुटनों पे बांधते हैं, फिर उसका बाकी बेल्ट का भाग है जो पीठ पे भी बांधा जाता है, तो बिल्कुल पीठ सीधा रहता है। हम झपकी लेना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना भी स्ट्रगल है, जब सुबह देखते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अलग अलग दिशाओं में भक्तों के सर जाते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं भगवान है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, हरे कृष्ण, तो इतने सारे हम करते हैं, ये संघर्ष है। हम खड़े खड़े करते हैं, पैदल चलते हैं, मैंने मेरे गुरु भाई और एक्चुअली उनको चलते चलते भी नींद आ रही तो दौड़ के कर रहे थे, बहुत रेयर है। श्रील प्रभुपाद ने कहीं संकेत दिया कि दौड़ने की नौबत आती तो वैसे जाके सो जाना चाहिए, लेकिन हर रोज ये बात होनी नहीं चाहिए, तो फिर अच्छा तो हमें समझने वाली बात है कि संघर्ष होता है. दिस स्ट्रगल इज द प्रोसेस. इस संघर्ष है, यही विधि है हमारे भक्ति की, विधि यही है. नौ विधा भक्ति के पालन में, चार नियमों के पालन में जो कठिनाई हमें अनुभव होती है उसको सहन करते हुए भक्ति की विधियों का पालन करना, भक्तों के संग में इस हालाहाल विष को एक प्रकार से पी लेना ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले. जब भक्त हर कठिनाई की परिस्थिति में भक्ति का अनुशीलन करता है तो बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है. श्रील प्रभुपाद लगभग एक महीने तक सिर्फ भागवतम के ऊपर निर्भर थे, ना कुछ भोजन ना कुछ जलपान. उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू, ये मत सोचना तुम्हारे साथ नहीं होगा. लेकिन साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने बताया, आई एम लिविंग प्रूफ दैट यू कैन लिव विदाउट फूड एंड वॉटर. बिना जलपान के, बिना भोजन के, बिना अन्न के ग्रहण किए पूर्णतया हरि नाम पर, भगवान नाम पर, भगवान की लीलाओं पर निर्भर होते हुए हम रह सकते हैं. एक बार श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा था कि मेरे पास इतनी सारी सेवाएं हैं कि माला नहीं कर पा रहा हूं मैं, माला कम हो रही है. कई भक्त बताते हैं, माला क्यों कर रहे हो, इतनी ज्यादा माला क्यों कर रहे हो, माला करने का उद्देश्य क्या है, सेवाएं तो है तो फिर सेवा करो, माला क्यों कर रहे हो. इसके दो उत्तर है. एक तो सामान्य उत्तर है कि सर्वोच्च सेवा जो है हरिनाम है, सबसे बड़ी सेवा हरिनाम है. लेकिन हर सेवा का एक समय होता है, प्रसादम सेवा का एक समय है, उस समय ही हम प्रसाद पाते हैं. बाद में जाएंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है लेकिन उसके लिए स्पेशल पीपल्स मर्सीज रिक्वायर्ड. बट इसी प्रकार पूरा लाभ प्राप्त होना है हरिनाम का तो उसका एक समय है, निर्धारित समय है, उस समय पे ही करना चाहिए. फिर भी इतना समय बचा नहीं है माला करने के लिए क्योंकि इतनी सारी सेवाएं हैं, तो उसका उत्तर यह नहीं कि सेवा कम करो, उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि खाना सोना बंद करो या कम करो. प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम. सभी अपने घर पे कई बोलते हैं ना, स्टंट वगैरह दिखाते हैं टीवी में, फिल्मों में, तो बोलते डोंट ट्राई दिस एट होम. वैसे डोंट ट्राई दिस एट होम, सावधान, भक्तों के संग में ही इस प्रकार की विधियों का पालन करें. कितने लोगों को अच्छा लगा था निर्जला एकादशी को, यहां पे जो फेस्टिवल हुआ था, हाथ ऊपर करेंगे. बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि नहीं थे, लेकिन बताइए कि अगर ये फेस्टिवल नहीं होता, इतने भक्त नहीं करते होते निर्जला एकादशी, क्या आसानी से कट जाती? इसे बोलना नहीं चाहिए कट जाती करके, लेकिन आसानी से हम निभा पाते ये संकल्प? यस नो, नो यस नो. तो ये संकीर्तन है, संग में कीर्तन, सम्यक रूपेण कीर्तन. तो देवतागण जो संकीर्तन कर रहे थे एक साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आदेश अनुसार सागर मंथन हो रहा था, क्षीर सागर का भगवान पूरी तरह सहयोग भी दे रहे थे, असुरों को भी दे रहे थे, लेकिन असुर लोग समझ नहीं पाए थे कि उनका सहयोग मिल रहा है. जैसे नास्तिक व्यक्ति ये समझता नहीं है कि मुझे जो भोजन मिल रहा है रोज वो भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन भगवान उसका भी पालन करते हैं. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, शिव जी के भी हृदय में. लेकिन जब परमात्मा शब्द शिव जी को संबोधित किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि भगवान विष्णु का संकेत देने के लिए कि वे उनके विस्तार हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता में, विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो भवे स्थितो जगत. आपको मैं क्या बताऊं अपने ऐश्वर्य के बारे में, कहां तक बताऊं? मेरे ऐश्वर्य के एक रंच मात्र, एक अंश से मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं, संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं. एकांशेन स्थितो जगत, भाई फ्रैगमेंट ऑफ माय ओपुलेंस. तो फिर ये क्या है? श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य था कार्तिकेय प्रभु, शिष्य थे कार्तिकेय प्रभु. तो कार्तिकेय प्रभु की पत्नी सॉरी उनकी मदर अपनी मरण शैया पर थी और शिल प्रभुपाद बताते हैं कि तब उनकी माताजी उनसे पूछ रहे कहां है तुम्हारे कृष्ण, बताओ कहां है तुम्हारे कृष्ण, और बोलते हुए गुजर गए। तो फिर क्या परिणफल क्या हो सकता है, कहां है तुम्हारे कृष्ण बोलते हुए जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो स्वाभाविक है बहुत ही अच्छा गंतव्य स्थान होगा। तो हर परिस्थिति में हमें यह देखना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान को से भक्ति वेदांत तात्पर्य का अर्थ क्या है, वेदांत को भक्ति की आंखों से हम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने मायावादी के बारे में बताया दिया विदंतीस नॉट वेदांतीस, दांत नहीं है उनका विदंतीस, लेकिन भक्ति वेदांत हमें चाहिए। भक्ति वेदांत पढ़ने से इन ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें समझ में आएगा कि असली में शिवजी की स्थिति क्या है, भगवान की स्थिति क्या है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसे क्लियरली हमें समझ में आएगा। भगवत गीता पढ़ेंगे भगवत गीता यथारूप, उसमें भगवान इसी विभूति योग में बताते हैं वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, वृष्णि वंशों में मैं वासुदेव हूं। कौन वासुदेव, कौन वासुदेव, बलराम। ये भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा, भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे तात्पर्य में अनुवाद में प्रभुपाद बताते हैं वृष्णियों में मैं बलराम हूं, कृष्ण बलराम की। तो ग्रंथों का अध्ययन करना इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आचार्य का भाव क्या है, तब हम समझ पाएंगे, क्योंकि आचार्य भगवान के भाव को समझते हैं। हम अगर सारार्थ दर्शनी टीका पढ़ेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने बातचीत हो रही है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, सुन पा रहे हैं। जैसे अर्जुन पूछ रहा है भगवान से आप ही मुझे उपदेश दीजिए, शिष्येस्तु अहम् शादि मामत्वाम् प्रपन्नम्। तब भगवान बता रहे हैं तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, व्यासदेव के पास जाओ, और भी तो ऋषि हैं उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो। आचार्य इस प्रकार से अपने साक्षात्कार व्यक्त करते हैं। तो आचार्यों की वाणी से हम ठीक से समझेंगे तब हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा इस श्लोक पढ़ने से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इस श्लोक में बस एक मिनट और लूंगा, एक श्लोक आया है पदिम विश्वस्यात्मेश्वर गुम शाश्वत गुम शिवम अच्युतम, यहां पर लिखाया गया भगवान के कई नामों के बारे में यहां पर बताया गया शिवम अच्युतम सब्रह्म सशिव सेन्द्र सोक्षर परम स्वराट, उसी नारायण सूक्त में आता है, ये यजुर्वेद से मंत्र है। और ये जो श्लोक बताया गया इसका अगला श्लोक है नारायण महाज्ञेयम विश्वात्मानम परायणम, स्पष्ट लिखा है। हम ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, भक्तों के संग में नहीं समझेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, शिवजी कौन है, कृष्ण कौन है, उनके बीच का संबंध क्या है। तो गृहस्थों के लिए एक विशेष घटना है श्रील प्रभुपाद के साथ, वो बोल के विराम देंगे कि शिकागो में एक प्रकोष्ठ प्रभु बताते हैं कि पति पत्नी दोनों बैठे थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, श्रील प्रभुपाद ने उनसे प्रश्न किया कि तो कह रहे मेरे ग्रंथों का अध्ययन करते हो दोनों, दोनों ये नहीं बोला कि सिर्फ हस्बैंड पढ़े वाइफ ना पढ़े या वाइफ घर पे है इसलिए वाइफ पढ़े, नहीं। तो हस्बैंड ने बताया कि प्रभु जी ने बताया कि मैंने आपका भगवत गीता यथारूप पढ़ा है, मैंने चैतन्य भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रंथ पढ़ा है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और भी बुक्स पढ़े हैं। तो उनकी पत्नी से पूछा व्हाट अबाउट यू, प्रभुपाद ने पूछा, उन्होंने बताया कि मुझे जप करना अच्छा लगता है लेकिन मैं आपका ग्रंथ ज्यादा पढ़ती नहीं हूं। फिर बताया लेकिन मैं आपका कृष्णा बुक पढ़ती हूं, आपका कृष्णा बुक मैं पढ़ती हूं। तब श्रील प्रभुपाद ने बताया आह दैट इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज देयर इन इट, सब कुछ कृष्णा बुक में है, आई ऑल्सो रीड इट, प्रभुपाद ने बताया। कई बार ऐसा हुआ भक्त लोग कमरे में आए, प्रभुपाद पढ़ रहे हैं, एक बार कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, प्रभुपाद ने बताया दिस बुक इज सो नाइस, कि किसी को लगेगा कि प्रभुपाद में घमंड है, नहीं, प्रभुपाद ने बताया कि कृष्णा हैज रिटन दिस बुक्स। तो अगर प्रभुपाद के ग्रंथों को अध्ययन करने से शास्त्र के मर्म हमें समझ में आएंगे और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने में हमें अगर असुविधा है तो कम से कम कृष्णा बुक से शुरू करें। कृष्णा बुक स्टोरी बुक है, स्मॉल बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद के कृष्णा बुक्स पढ़ सकते हैं, इन सब का नियमित रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं और भक्तों से प्रश्न पूछ सकते हैं। साधु संघ का मतलब यह है, ऐसा नहीं कि प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए भक्ति में आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद के ग्रंथ लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, इन ग्रंथों में भगवान के दिव्य ज्ञान है। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बताते हैं बात, और हम कृष्ण को दे रहे हैं भक्तों को जब ग्रंथ दे रहे हैं, तो भगवान को अगर समझना है तो भक्ति वेदांत समझना है, भक्ति वेदांत तात्पर्य हमें समझना है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर 5 मिनट कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, एक दो सवाल लेंगे, दो सवाल लेंगे। यस माता जी, एक सेकंड आप माइक पे बात करें कृपया, सुना नहीं दे रहा, विशेष करके आप जो मेरा गुणगान कर रहे थे दोबारा बताएं माइक पे।
प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मुख से प्रवचन
मुकम करोती वाचा,
और मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता है वैष्णव के मुख से बार 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 श्रवण करते। अच्छा, मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि जैसे आपने बताया ना कि जो माया देवी है, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि किसी के घर में कोई कुत्ता होता है तो उन्होंने लिख रखा होता है बाहर और वो मतलब भौंकता है, कोई आता है तो वो भौंकता जाता है, मगर जब मालिक उसे बोलता है कि हो जाओ, है ना, वैसे आपने बताया कि जैसे टेम्पल है, टेम्पल में भक्तों का संग है, मतलब भक्त हैं, सब है, वाइब्रेशन है ना, तो प्रभु जी क्या माया देवी भी मतलब एंटर करेगी यहाँ पे?
पहले तो मैंने ये नहीं बताया कि भक्तों के संग से माया देवी को चुप कराया जा सकता है, उनका पॉइंट वहां पे यही था कि भक्त लोगों के संग में माया के ऊपर हम बच इसलिए सकते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान का शरण लिया है, क्योंकि वो प्रपन्न है, क्योंकि उन्होंने प्रपन्नता प्राप्त की है, शरणागति प्राप्त की परम भगवान के, इसलिए भगवान उनके माध्यम से हमारी सुरक्षा करेंगे। असली में भगवान बचा रहा है माया से, मामेव मतलब मैं ही, मात्र मेरे ही वजह से भगवान ही बचा सकते हैं माया से, भगवान की निज शक्ति है, मामा माया दुरत्यया, सामान्य जीव कैसे लड़ पाएगा माया से, तो स्वयं भगवान ही बचा सकते हैं माया से। माया पति है, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगम, इसी श्लोक में है, संपूर्ण विश्व के पति हैं, तो माया के भी पति हैं, उस शिवजी के भी पति हैं। भागवत में बताया गया वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, शिवम शब्द का अर्थ है जो कल्याणकारी है, तो भगवान कल्याणकारी है, इसलिए हमारा असली कल्याण है, असली कल्याण है माया के चंगुल से बचना, और वो संभव है उन भक्तों के संग में परम भगवान का गुणगान करना, क्योंकि भक्त के संग में हम रहेंगे तो वही कार्य करेंगे, तो भक्त करते हैं, भक्त क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो स्वाभाविक है हम उनके साथ, शराबी का संग करोगे शराबी बनोगे, भक्तों का संग करोगे भक्त बनोगे, दैट्स द लॉजिक।
प्रभु जी जैसे हम संग में है ना तो हम अपना बचाव कर सकते हैं ना, जैसे हम बाहर जाते हैं तो मतलब मेरी तो हालत खराब होती है, मैं सही बताऊं प्रभु जी आपको, तो उसको कैसे हमें बैलेंस करना चाहिए?
तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर स्पिरिचुअल सैंडविच दिया है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम तो डबल हो गया, सुबह का प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम जो 4:30 से है वो मंदिर में करें या घर पे करें, जरूर करें, 4:30 से 9 बजे तक मैक्सिमम प्रोग्राम करें, खुद को प्रोग्राम करें कि रोज ये प्रोग्राम करें, तो ये पहली बात। दूसरा, एक अच्छे मित्र की आवश्यकता है भक्ति में, वो मित्र नहीं जो सिर्फ आपका गुण देखेगा, आपकी चापलूसी करेगा, वैसा मित्र जो कि बिल्कुल आपके बारे में खुलासा कर दे, आपको सामने बता दे और आपको बुरा भी ना लगे, ऐसा कोई मित्र होना चाहिए, कि ये मजार नहीं बोले, वैसा कोई मित्र हो जो कि जिसके बोलने से आपको बुरा भी ना लगे लेकिन आपका आपके भलाई के लिए बोले, तो वो व्यक्ति जो है आपकी कमियों को बार बार बताता रहेगा, जितना अपने मित्रों से अपनी कमियों के बारे में सुनेंगे, हम सतर्क रहेंगे हमारे कमियों के बारे में कि कौन कौन सी घड़ी में मैं विचलित होता हूं या होती हूं, तो उन चीजों को फिर हम अवॉइड करेंगे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम शरणागति के लक्षण है। भक्तों के संग में और एक अच्छे मित्रों की वजह से और एक स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम से हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बच सकते हैं, कम से कम सतोगुण में रहेंगे। सतोगुण में रहेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, पता करने के लिए एक और तरीका है, बुद्धि को तीव्र बनाना, सूक्ष्मतर तरीके से तीव्र बनाना, जिसके लिए ग्रंथों का अध्ययन मदद करता है। और जितना अधिक गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। जितना अधिक आध्यात्मिक कार्य हम अपने जीवन में जोड़ते जाएंगे उतना अधिक हम माया के चंगुल से बच सकते हैं। माया क्या है? दैट विच इज नॉट, वो जो नहीं है। क्या नहीं है? तो कृष्ण नहीं है। तो जितना अधिक हम कृष्ण ऐड करेंगे माया का प्रभाव नहीं होगा, वो तो प्रसन्न ही है जितना अधिक हम कृष्ण के शरण आएंगे। और जितना अधिक एक्टिविटीज हम ऐड करेंगे, जैसे छोटी से छोटी चीज, ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो पहले भगवान से प्रार्थना करके दिन प्रारंभ करें। दोपहर के समय पे सब सुट्टा ब्रेक लेते हैं, आप जपा ब्रेक लीजिए, एक्टिविटीज ऐड करिए। अगर ऑफिस में कान में वॉकमैन ईयरफोन लगाना अलोड है, या आईफोन या जो भी है लगाना, आईफोन है उसको क्या बोलते हैं, कान नहीं, ईयरफोन तो वो हो गया, कि सुनते क्या है, आईपैड है उसको क्या बोलते हैं, आईपॉड, आईपॉड, आईपैड, आईमैड। सो तो कान में लगाइए, लेक्चर सुनिए, कीर्तन करिए। तो ऑफिस में अगर चैनल म्यूजिक चला सकते हैं तो ये भी लगा सकते हैं, कई ऑफिस में लिबर्टी है। या बीच में 5 मिनट चाय पीने के लिए ब्रेक अलोड़ा, 5 मिनट बाहर जाइए, किसी भक्त को कॉल करिए, अपनी दिनचर्या को सुचारू रखिए, कोई टाइम वेस्ट ना करें, अपने मन को इतना समय न दें कि माया को अंदर घुसने का अवसर मिले। मुश्किल है, असंभव नहीं है, इसलिए भक्तों का संग चाहिए, अधिक से अधिक करें। संघर्ष ही विधि है। अब आसान हो गया तो फिर क्या, फिर आप वहीं रहेंगे, ऑल्टर में रहोगे, आप पूजा करते रहोगे। श्रीधर महाराज बताते हैं, शिला प्रभुपाद के दिवंगत शिष्य, 24 घंटे तुम मंदिर में कीर्तन कर सकते हो तो समस्या नहीं है। इसी मंदिर के एक भक्त को बताया था, दिल्ली मंदिर में कुछ 15 साल पहले उन्होंने ये बात बताया क्लास में, IVF क्लास में, तब मैं IVF क्लास में जाता था। उन्होंने बताया कि 24 घंटे कीर्तन कर सकते हो, तुम्हें जप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि नहीं करते इसलिए मन को संतुलित करना पड़ता है, अनुशासित करना पड़ता है, उसके लिए जप करना पड़ता है, बाकी भक्ति की विधियों का पालन करना पड़ता है, इनकी जरूरत पड़ती है, अन्यथा हम भटक जाते हैं, इसलिए करना जरूरी है। एक और व्यक्ति को चांस देते हैं सवाल। यस प्रभु जी, यू स्पोकन, सो लेट हिम आस्क।
Thank you, Prabhuji, for the class.
Just a servant.
Prabhuji, I wanted some like practical tips. Like throughout your class, you were stressing on studying and reading Srila Prabhupada books. Many other times, I also hear this that one should scientifically study Srila Prabhupada books. But Prabhuji, I get some practical difficulties. Like just last week, I started with the first kind of Srimad Bhagavatam, and in every nook and corner, in every line of that purport, I was getting some new facts, some new things. It was getting very difficult for me to assimilate those things, so I started underlining. But after the end of the first chapter, I found that almost every page had hundreds of underlinings.
Oh yeah, I have got a green Gita and a pink Gita.
And then in the second chapter, I started, okay, I will just read and read, and whatever I can remember, I will remember, I won't make much. Hmm. And so I did that with the second chapter, and then it was like that was also not feeling very helpful. So like after like I read the whole canto, I won't remember those points. So how some practical, like I'm studying engineering from my nursery, from first class. So now when I read some material books, it's not that difficult for me to assimilate. I can immediately grasp those points. But for many years in my Krishna, I find how to scientifically study Prabhupada books.
There is a book by Satsarup Maharaj called Reading Reform. You could read that book, how to improve your reading. That is one point. Second thing is, there are many devotees in the temple who are excellent readers. I am not one. I cheat. मैं बोलते हैं ना वो फ्रंट पेज बैक पेज दोनों देख के बीच का स्टोरी बताते हैं मैं आई एम लाइक दैट बट देयर आर डिवोटीज हियर हु रियली रीड इंटेंसली आई नो दैट हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हाउएवर लेट इट इज ही विल सिट एंड रीड एटलीस्ट वन श्लोका सी प्लीज डू नॉट थिंक यू कैन कैप्चर कृष्ण बाय योर एबिलिटी इट इज बाय द सिंसियर स्ट्रगल एंड डिपेंडेंस ऑन कृष्ण भगवान के ऊपर ईमानदारी से जो हम समर्पित भाव प्रदर्शित करते हैं उससे भगवान आकर्षित होते हैं यू डोंट माइंड माई आंसर इन हिंदी राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन प्रभु जी का प्रश्न यह था कि ग्रंथों को सही ढंग से किस प्रकार अध्ययन किया जाए जिससे कि हमें उसका लाभ प्राप्त हो कि प्रभु जी को कभी कभी पढ़ते पढ़ते इतना सारा सब कुछ ही सार लगता है इससे बहुत बड़ा भार लगता है तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसको कि शीला प्रपाद ने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताया है कि ग्रंथों की संख्या बनाने में कोई आवश्यकता नहीं है इससे बेहतर है कि गहराई से ग्रंथों का अध्ययन करें नियमित रूप से वो ज्यादा जरूरी है तो नंबर बनाने का चक्कर ही नहीं है अब 12 स्कंद हो सकता है शरीर खत्म होने के तक खत्म नहीं हुआ तो भगवान देख लेते हैं भावक राय जन ओह ओनली 8 कैंटोस प्लीज डोंट कम टू गोलोका आई विल सेंड यू टू स्वर्गलोका नहीं चार नियम और 16 माला सही ढंग से करें नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें और कोशिश करें सबसे बढ़िया आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं दिस स्ट्रगल इज अ प्रोसेस सेम थिंग अगेन और एक कर सकते हैं उसके अलावा श्रवणम मननम निधिध्यास ये सब है परिचर्चा आपको चर्चा करनी चाहिए जितना भी पढ़ा लोगों से चर्चा करें प्रचार करिए जहां भी क्लास देने का चांस मिला जो बुक पढ़ रहा है उसी से बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ भी बोले उसे जोड़ दीजिए मैंने इस ग्रेस गौरांग प्रभु से सुना था एक बार 2003 में शायद उनके साथ गाड़ी में जा रहा था बॉम्बे में तो उनसे पूछा कि भागवतम में कैसे टेस्ट डेवलप करें तो उन्होंने बताया कि मैं जब जब भागवतम पढ़ रहा था तो हर क्लास में भागवतम ही देता था जो भी क्लास जाता था IVF में जाता था कहीं भी था कांग्रेस कहीं भी जाता था भागवतम से बोलता था तो उसको प्रैक्टिकल यूज में लाना है अदरवाइज उनका क्या फायदा मुझे हो सकता है कि इतने सारे श्लोक मालूम हो लेकिन मैं बस उसको श्लोक बोलता रहूं और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्लास में लोगों के लाभ के लिए प्रस्तुत ना करूं तो फिर वे वेस्ट है इट इज ए संस्कृत व्हेन इट बिकम्स यूजफुल फॉर अ जीवा देन इट इज अ श्लोक अदरवाइज इट इज ए संस्कृत इट इज ए संस्कृत सिर्फ संस्कृत शब्द है वो श्लोक तब बनता है जब भगवान में प्रीति और रति विकसित करने में किसी भक्त को वो सहाय करे मदद करे तो अभी तो गहराई से अध्ययन करना ही अच्छा है संख्या अपने आप बन जाएगी बाकी इसके अलावा संख्या बनाना भी चाहते हैं किसी वजह से बस दिल की तसल्ली के लिए मैंने पूरा भागवतम खत्म किया तो एक फुल रीडिंग कर सकते हैं फुल रीडिंग करने के बाद इन डेप्थ में स्टडी शुरू कर सकते हैं उसके अलावा बुक्स भी हैं जो कि पढ़ने के लिए मदद करते हैं भागवतम के प्रथम 4 कैंटोस के ऊपर सरेंडर अनटू मी करके सॉरी अनवीलिंग इज लोटस फीट करके ग्रंथ है हिज ग्रेस गुरुजन प्रभु ने लिखा है भागवतम स्टडी करने के बाद उस बुक को पढ़ सकते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट बुक या भागवतम पढ़ने के पहले स्टोरीज फ्रॉम भागवतम करके पूर्ण प्रज्ञा प्रभु ने बुक लिखा है उसको पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद भागवतम शुरू कर सकते हैं बहुत सारी मेन थिंग इज टू स्टडी अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज और या 5 दिन 6 दिन पढ़िए लगातार 7वां दिन जो है समराइज करिए जो भी पढ़ा है उसका रिव्यू करिए 1 पेज रिव्यू 2 पेज रिव्यू बना के रखिए अपने लिए समथिंग लाइक दैट यू नो डेवलप योर स्टाइल आई कैन नॉट टेल यू हाउ टू चैंट वी कैन डिस्कस जनरल प्रिंसिपल्स आपका अपना स्टाइल होता है क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत संबंध है भगवान के साथ आई डोंट वॉन्ट इंटरफियर इन दैट बट दीज आर प्रिंसिपल्स यू कैन स्टडी दिस पर्टिकुलर बुक दिस सपोर्टिंग बुक्स यू कैन स्टडी फॉर भागवतम यू कैन डिस्कस विद डिवोटीज व्हेन यू गेट स्टक और कोई गलत बात नहीं है कि सब सबको अंडरलाइन किया 2-3 तो रजिस्टर होंगे ना या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हर श्लोक को कंप्लीट करने के बाद उसमें से मेन 3-4 पॉइंट बस नोट्स में लिख लें जिससे कि पूरा श्लोक समझ में आ जाए जैसे कि आपको सुबह लेक्चर देना है उसमें मेन तीन चार पॉइंट चाहिए. थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.